हरे कृष्णा। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, हम सब जानते हैं भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं, जो जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं। तो ऐसे जो महान आचार्य हैं, हमें ये अच्छे तरह से समझना चाहिए कि वो हमारी तरह साधारण जीव नहीं है। जैसे हम जैसे साधारण जीव हैं, नित्यबद्ध जीव हैं, हम भक्त बन सकते हैं, भगवान के धाम भी जा सकते हैं, लेकिन अभी कई जन्मों से अनादिकाल से भगवान को भूले हुए हैं। तो हम हो गए नित्य बद्ध जीव, हम भक्त बन सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो है नित्य सिद्ध, इसका मतलब वो कभी कृष्ण को भूलते नहीं है, वो हर समय भगवत धाम में ही रहते हैं। कभी कभी भगवान के आज्ञा के फलस्वरूप वो यहाँ पे इस पृथ्वी में आते हैं या इस भौतिक सृष्टि में आते हैं कोई विशेष सेवा के लिए। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी ऐसे ही भगवान के नित्य पार्षद हैं, मंजरी स्वरूप है उनका, और वो केवल इस भक्ति का प्रचार के लिए, चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का प्रचार के लिए इस भौतिक जगत में आए हैं, हम सब पे कृपा करने के लिए। जिस तरह कृष्णा आते हैं किस लिए, हम सब पे कृपा करने के लिए, उसी तरह कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो महान आचार्य होते हैं, वो इस संसार में आते हैं केवल हम सब पे कृपा करने के लिए, हम सबको वापस भगवान कृष्ण के साथ जोड़ने के लिए। तो भक्ति विनोद ठाकुर विशेष आचार्य हैं, उनके प्रणाम मंत्र में इसलिए कहा गया है, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने। उनका नाम है सच्चिदानंद भक्ति विनोद, जो कि गौर शक्ति स्वरूपाय, जो कि चैतन्य महाप्रभु के विशेष शक्ति है, गौर शक्ति रूपानुगवरायते। रूप गोस्वामी के जितने अनुगायी हैं उनमें से बहुत वो श्रेष्ठ है। कल हमने जीव गोस्वामी जी का आविर्भाव तिथि मनाया सबने, तो जीव गोस्वामी जो छह गोस्वामी थे उनमें से बहुत प्रमुख थे, सबसे छोटे थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत प्रचार किया। लेकिन जब षड गोस्वामी चले गए यहाँ संसार से, तो उसके बाद उस समय तक प्रचार चलता रहा, नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रचार किए, विश्वनाथ शक्ति ठाकुर किए, लेकिन फिर कुछ गैप आ गया। 100-200 वर्ष आप ये बोल सकते हैं, कम से कम 1650 से लेके लगभग 1850, इस 200 साल के दौरान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का बहुत बुरी तरह से उसका क्या उसको बोल सकते हैं, अभ्रंश सब पैदा हो गया, लोग गलत गलत अर्थ निकालने लग गए। वैष्णव जो थे उनको लोग बहुत नीचे दृष्टि देखने लगे, क्योंकि जो वैष्णव थे उनका आचरण बिल्कुल सही नहीं होता था। समाज में सहजिया लोग बहुत आ गए थे, सहजिया मतलब समझते हैं आप, मतलब जो बहुत सहज ले लेते हैं, जो बोलते हैं राधा कृष्ण के बारे में, भक्ति के बारे में, लेकिन अपने आचरण में कुछ उसको पालन नहीं करते। और कई बार सहजे लोग खुद ही को कृष्ण मान के और खुद ही रासलीला करने लगते हैं, ऐसे सहजे भी होते हैं। और गोपी का वो कपड़े पहनना, स्त्री का वेश धारण करना, तो इस तरह से वैष्णवता के नाम से बहुत सारे समाज में गलत भ्रांतियां सब पैदा हो गई, लोग ठीक से आचरण नहीं कर रहे थे, लोग से तो भिखारी लोग हैं, कुछ काम वाम नहीं है, माला झूली लेके बैठ जाते हैं, और तो इस तरह से बहुत बुरा हाल हो गया। विशेष करके गौड़ीय वैष्णव जो सिद्धांत है, जो हम जानते हैं सबसे ऊंचा सिद्धांत है चैतन्य महाप्रभु का, लेकिन उस सिद्धांत का बहुत समाज में लोग उसको बहुत नीचा मानने लग गए, तो ऐसी परिस्थिति थी। तो इस परिस्थिति में केवल श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी को पूरा श्रेय मिलता है कि वापस से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को समाज में फिर से उन्होंने पुनर्जागृत किया, उसको सम्मान दिया वापस से। सारे जितने विद्वान लोग हैं उनके बीच में उनको उन्होंने स्थापित किया कि चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है ये बहुत ही ऊंची शिक्षा है। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी को उपाधि मिला है सप्तम गोस्वामी। जैसे षड गोस्वामी है, उनके बाद ये कौन है, सप्तम गोस्वामी। तो बहुत ही इनका महत्वपूर्ण योगदान है हमारे गौड़ीय वैष्णव इतिहास में। आज शायद भक्ति विनोद ठाकुर नहीं आते तो हम सब यहाँ नहीं बैठे होते, कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने पुनर्जागृत किया महाप्रभु के सिद्धांतों को। फिर हम आगे जानते हैं, आगे परंपरा में उनके उनके जो पुत्र हैं श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, गौड़ीय मठ की स्थापना की। फिर उनके परम तेजस्वी शिष्य श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने इस चैतन्य महाप्रभु सिद्धांत को लेके पूरे विश्व में प्रचार किया। तो एक तरह से हमारे जो फाउंडर हम कहते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर एक तरह से मेरे फाउंडर हैं, क्योंकि उन्हीं की इच्छा थी, उन्होंने सबसे पहले बताया कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जो है पूरे विश्व भर में व्याप्त होगा। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि एक महान सेनापति आएंगे नित्यानंद प्रभु के, जो इस महाप्रभु के आंदोलन को लेकर पूरी दुनिया में जाएंगे। और सबसे पहले अंग्रेजी में किताब लिखा श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के बारे में। पूरे इतिहास में चैतन्य महाप्रभु के बारे में पहली अंग्रेजी किताब किसने लिखा? श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने। लॉर्ड चैतन्य इज लाइफ एंड प्रीसेप्ट्स बोल के एक छोटी सी किताब उन्होंने निकाली और उसको पूरे विश्व में अलग अलग लाइब्रेरी में भेजा। और वो जो वर्ष था जिसमें उन्होंने ये किताब लिखा वो था 1896। और उसका और एक क्या महत्व है इस वर्ष का, सन 1896 श्री प्रभुपाद जी का जन्म। तो देखिए उसी वर्ष भक्तिविनोद ठाकुर जी ने पहली बार अंग्रेजी में किताब लिखी और वो किताब कनाडा में पहुंची, पाश्चात्य देश में। और उसी वर्ष श्री प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, जो कि पूरे पाश्चात्य देश में चैतन्य महाप्रभु के संदेश को लेके प्रचार किया उन्होंने। तो ये सब भगवान की योजना है, ये सब चैतन्य महाप्रभु की योजना है, किसको कब भेजना है, कैसे क्या आंदोलन को आगे बढ़ाना है। तो एक सीक्वेंस में आए, पहले भक्तिविनोद ठाकुर आए, फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर आए और फिर श्रीला प्रभुपाद जी आए। तो जैसे मैंने कहा कि भक्तिविनोद ठाकुर है तो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद, लेकिन जब इस संसार में आए तो साधारण व्यक्ति की तरह बचपन उनका जीवन में काफी कठिनाई के संघर्ष से वो बीते। तो हमें जो महान आचार्य हैं उनके जीवन को भी सुनना चाहिए, हमें नहीं सुनना चाहिए तो साधारण कोई जीवन कथा है नहीं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी का श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना चाहिए हमें, भक्तिविनोद ठाकुर जी के जीवन के बारे में, जो गोस्वामी उनके जीवन के बारे में, क्योंकि जो महान वैष्णव है इनका जीवन साधारण जीवन नहीं है। तो इनके जीवन के बारे में जो हम सुनते हैं तो हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और हमारा शुद्धिकरण होता है। तो इसलिए आइए आज हम थोड़ी देर चर्चा करते हैं भक्तिविनोद ठाकुर जी का जो जीवन है, जो उनका कैसे उनका जन्म हुआ, बचपन उन्होंने क्या किया, कैसे आगे वो प्रचार कार्य में लगे। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी का जन्म हुआ था सितंबर 3, 1971। आज क्या तारीख है? सितंबर 4। तो तिथि और अंग्रेजी डेट में केवल एक दिन का फर्क है, सितंबर 4 और सितंबर 3। तो आज सितंबर 4, 2017। और भक्तिविनोद ठाकुर जी का जन्म कब हुआ था? सितंबर 2, 1838। केवल दो दिन का अंतर है इंग्लिश तिथि और इंग्लिश डेट में। तो कितने वर्ष हो गए? 1838 और अभी क्या चल रहा है? 2017। करीब 180 वर्ष पहले भक्तिविनोद ठाकुर जी इस धराधाम में आए थे और उनके पिताजी का नाम था आनंद चंद्र दत्ता, जो कि बहुत वो भी धार्मिक व्यक्ति थे। और उनका जन्म हुआ था बीर नगर गांव में, नदिया में ही, और कायस परिवार से थे। जैसे आप जानते हैं अलग अलग जाति होती है, तो बंगाल में जाति कायस्थ। तो आप देखेंगे कई सारे वैष्णव आचार्य कायस्थ परिवार में जन्म लिए, रघुनाथ दास गोस्वामी कायस्थ परिवार में जन्म लिए, और ऐसे कहते हैं प्रभुपाद जी भी इसी सुवर्णवाणी के कायस्थ उसी में है। तो इनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ और कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है सिल्वर स्पून, बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, यानी जब उनका जन्म हुआ तो वो बहुत ही धनी परिवार में उनका जन्म हुआ, बहुत ही अच्छे परिवार में, बहुत ही नामिक परिवार में उनका जन्म हुआ। नरोत्तम दास ठाकुर ये भी इसी कायस्थ परिवार में ही थे। तो उनके जो पूर्वज थे, ऐसा बताया नरोत्तम दास ठाकुर के पिताजी कृष्णानंद दत्ता, तो उसी पारिवारिक श्रृंखला में जन्म हुआ भक्तिविनोद ठाकुर जी का। उनकी माता का नाम था जगत मोहिनी, और फिर लेकिन बचपन में भक्ति विनोद ठाकुर जी कुछ उनके दिक्कत हो गई, उनके जो दादाजी थे उनका कुछ ऐसा समस्या हो गई, कुछ उड़ीसा में उनके कुछ ज़मीन जायदाद थे जिनको कुछ और लोगों ने हड़प लिया, तो उनको उड़ीसा जाना पड़ा उनके पिताजी को दादाजी को। तो भक्ति विनोद ठाकुर बचपन में अपने नाना के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ, बड़े हुए वो। उनके नाना जी बहुत धनी जमींदार थे और उला नामक नगर में रहते थे, और वहाँ पे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी बचपन से बहुत अच्छा उनको पढ़ाई का अवसर मिला। पहले तो एक दो साल बंगाली स्कूल में पढ़े वो, लेकिन 6 साल की उम्र से वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने लगे। उस समय जो हमारे अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे, उस समय उनका राज्य बहुत अच्छे से फैला हुआ था, और अंग्रेजों ने जानबूझ के उस समय अपना अंग्रेजी शिक्षा जो उन्होंने शुरू किया, और हमारे जो वैदिक शिक्षा जो हमारे वेदों है उसको क्या बताया उन्होंने, ये सब अंधविश्वास है, ये सब काल्पनिक है। खैर, तो उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अंग्रेजी अध्ययन किया और बचपन से ही बहुत अच्छे क्या थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट, क्या बोलेंगे, विद्यार्थी, बहुत अच्छे विद्यार्थी थे बचपन से, और बहुत दार्शनिक, मतलब बहुत जिज्ञासु भी थे। जैसे कई जैसे साधारण बच्चे क्या होते हैं, खेल कूद में मस्त रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं जो महान आचार्य हैं बचपन से उनमें भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी थे, बचपन से वो राधा गोविंद जी के मंदिर में जाते थे, राधा गोविंद जी के विग्रह को पूजा करते थे। तो इसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जी बचपन से राधा कृष्ण की पूजा तो नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उनका हमेशा एक दार्शनिक चिंताधारा था, जिज्ञासु थे, और उनको अच्छा लगता था कई बार। जैसे उस समय में तो लोग रामायण की कथा, महाभारत की कथा सुनाते थे, तो कई बार एक उनके घर में गार्ड था, उनके पास जाके वो सुनते थे रामायण कथा, कृष्ण कथा, महाभारत कथा। तो बचपन से उनको भगवान की कथा सुनने बहुत रुचि थी, लेकिन बचपन में ही उनके पिताजी का देहांत हो गया, और फिर जब वो 12 साल के थे उस समय तो बाल विवाह होता था, उनका विवाह हो गया, और फिर वो कॉलेज गए कलकत्ता में। पहले तो उला नगर में पढ़ते थे, फिर और ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कलकत्ता शहर चले गए। आप जानते हैं उस समय कलकत्ता बहुत बड़ा शहर था, ब्रिटिशर्स का, जो अंग्रेजों का वो कैपिटल था उस समय इंडिया का, इतना महत्वपूर्ण शहर था। तो उस समय जो इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी भी जो अंग्रेजों ने स्थापित की थी वो कैलकटा यूनिवर्सिटी थी, तो वहीं पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने शिक्षा प्राप्त किया। बहुत बड़े विद्वान बन गए, जैसा बताया, जैसे चैतन्य महाप्रभु शुरू में निमाई पंडित के रूप में थे, भक्ति का भाव प्रकट नहीं कर रहे थे, उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर जी भी शुरू में इस दौरान जब वो युवा अवस्था में थे तो बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान थे, उस समय भक्ति के लक्षण इतना उन्होंने प्रकट नहीं किया था। और साथ साथ उन्होंने बाइबल भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ा, क्योंकि उस समय जैसे मैंने बताया कि वैष्णवता का जो बहुत ही खराब समाज में क्या था, रेपुटेशन, छवि, जो वैष्णवता की छवि समाज में बहुत गिरी हुई थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा था, लेकिन किससे पढ़े, किससे सुने, चैतन्य चैतन्यमृत का यहाँ तक कि कोई किताब भी मौजूद नहीं था, सब अप संप्रदाय, आउल बाउल, अतिबाड़ी, सब अलग अलग सहज्य लोग अपनी अपनी किताब छापे हुए बैठे थे जिसमें सब अप सिद्धांत था। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बाइबल से आकर्षित हो गए, बाइबल को पढ़ने लगे, उनको लगा कम से कम बाइबल में भी थोड़ा भक्ति के बारे में बताया गया है। लेकिन संतुष्ट तो नहीं थे अंदर से, लेकिन क्या करेंगे, जिज्ञासा तो थी। खैर, इस तरह से वो फिर आगे जब इनकी पढ़ाई पूरा हो गया और उसके बाद फिर वो उड़ीसा आए, क्योंकि उनके दादाजी थे वो गुजरने वाले थे, उनके दादाजी परम वैष्णव थे, ऐसा बताया, दादाजी उनके जगन्नाथ जी की पूजा करते थे, राधा माधव के विग्रह उनके पास भी था, तो उनको दादाजी बहुत बड़े वो भी थे, क्या कहते हैं, ज्योतिष ज्ञान का उनको था, तो उनको पता चल गया मैं कुछ ही महीनों में अपना शरीर त्यागने वाला हूँ। तो उन्होंने विशेष पत्र भेजा, बोला कि मेरी इच्छा है तुम अंतिम समय मेरे पास आओ। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी कलकत्ता से उड़ीसा आए अपने दादाजी के पास में, बताते उनके दादाजी अच्छे भक्त थे, उनके पास गायें थी, वो जप करते थे, तो और बिल्कुल दादाजी ने बता दिया बस एक दो दिन में अपने शरीर त्याग करने वाला। तो उस दिन वो बैठ गए योगी के उसमें आसन में, भगवान का नाम जप करते करते उनके सर के ऊपर से छिद्र बन के उनकी आत्मा चली गई, जिसको कि बहुत महान मृत्यु माना है। जैसे हमारे शरीर में 9 छिद्र होते हैं ना, तो अलग अलग, जैसे ऊपर ये 10वां है, तो साधारण व्यक्ति जब प्राण त्यागते हैं वो नाक से त्यागते हैं, मुंह से त्यागते हैं, कई बार मल मूत्र से त्यागते हैं, लेकिन जो महान योगी रहते हैं वो अपने सर से उनकी आत्मा जाती है। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी ने बचपन में खुद अपने आंखों से देखा कि उनके उनके जो दादाजी थे उनके मस्तक से उन्होंने उनकी आत्मा बाहर चली गई, तो बड़े उनको देख के प्रभावित हुए। और उसके बाद फिर उड़ीसा में ही रह गए। उड़ीसा में वो टीचर, एक अध्यापक का उन्होंने पहला उन्होंने नौकरी किया, एक टीचर बन के स्कूल में, कटक में, कटक एक शहर है भुवनेश्वर के पास में, तो वहाँ सबसे पहले नौकरी किया भक्तिनाथ ठाकुर जी ने, एक टीचर बने, अध्यापक, और फिर धीरे धीरे वो हेडमास्टर भी बने, लेकिन उसके बाद वो कलेक्टर बन गए, एडमिनिस्ट्रेशन में होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो कलेक्टर बने। फिर उन्होंने एग्जाम दिया सिविल सर्विस, जैसे आजकल होता ना IAS एग्जाम, बहुत मुश्किल है, तो ये ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था सिविल सर्विस, तो भक्तिनाथ ठाकुर ने उस जमाने में उन्होंने बहुत मेहनत करके उन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम दिया था, और ब्रिटिशर्स के समय वो कलेक्टर बने थे। लेकिन साथ ही साथ, जैसे मैंने बताया, हमेशा उनको जिज्ञासा थी कैसे वो श्रीमद् भागवतम पढ़े, वैष्णवता के बारे में सुने, तो बहुत सौभाग्य से उनको चैतन्य चरितामृत की किताब पहली बार मिली, और जब पहली बार उन्होंने चैतन्य चरितामृत का अध्ययन किया, तब उनकी जो अंदर से जो उनका भक्त थे ही वो, तो चैतन्य महाप्रभु के लिए जो अनन्य भक्ति थी उसका फिर से पुनर्उदय हुआ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसको ना टर्निंग पॉइंट हिंदी में क्या बोलेंगे, जीवन में जो एक मेन जो होता है हादसा, जिससे आदमी का पूरा जीवन ही बदल जाता है, तो ये जो चैतन्य चेता में जो भक्तिनाथ ठाकुर जी ने पढ़ा, इससे उनका जीवन पूरा पूरा परिवर्तन हो गया, पूरी आस्था उन पे आ गई चैतन्य महाप्रभु पे। वो समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, स्वयं कृष्ण है, जो कि इस कलयुग में आए हैं इस पतित हम सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करने। तो उनकी पूरी आस्था चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों प्रति हो गई, और फिर वो दिन रात चैतन्य महाप्रभु के चिंतन में लगे रहे, चैतन्य चेतामृत पढ़ते थे, और फिर उन्होंने लिखना शुरू किया चैतन्य महाप्रभु के बारे में। 1868 में उन्होंने पहली कविता लिखी चैतन्य महाप्रभु के बारे में, और उसी समय उनको उपाधि दी गई सच्चिदानंद, हम कहते हैं सच्चिदानंद भक्तिनाथ ठाकुर, तो उस समय उनको उपाधि मिली सच्चिदानंद, क्योंकि उन्होंने जो कविता लिखी उसका नाम था सच्चिदानंद प्रेम अलंकार, चैतन्य महाप्रभु के बारे में उन्होंने कविता लिखी थी। और उसके बाद तो भक्तिविनोद ठाकुर जी का ऐसे कहते हैं कि उनका जो कलम है उसको कभी आराम नहीं मिला, हर दिन वो रचना करते थे। ऐसा कहते हैं कि थे तो वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, हाँ, लेकिन वो उनका जो डेली का जो आज स्केड्यूल था, टाइम टेबल था, ये बहुत ही प्रेरणादायक है। वो दिन में ऑफिस जाते थे, ऑफिस का पूरा काम करते थे। ऐसा कहा जाता है जो मैजिस्ट्रेट थे, जो बाकी मैजिस्ट्रेट लोग जो जो डिसीजन लेने में या जो निर्णय लेने में कई दिन लगा देते थे, भक्तिनाथ ठाकुर कुछ मिनटों में वो निर्णय ले लेते थे, इतना उनका बुद्धि इतना तीव्र था। तो ऑफिस जाते थे ठीक टाइम पे, बहुत पंक्चुअल थे, हमेशा अपने साथ घड़ी रखते थे, ठीक 10 बजे ऑफिस जाते थे, 3 घंटे ऑफिस लेके फिर दोबारा आते थे, फिर भोजन करके फिर ऑफिस जाते थे, फिर शाम को जब लौटते थे 5-6 बजे ऑफिस से, तो फिर थोड़ा बहुत प्रचार करके, हाँ, और फिर वो जल्दी भोजन करके सो जाते थे 7-8 बजे तक, और फिर 12 बजे उठ जाते थे, और लगातार 4 घंटा वो किताब लिखते थे, और फिर जप करते थे, फिर हल्का सा आधा घंटा आराम करके थोड़ा सा भोजन सुबह लेके, फिर अध्ययन करते थे श्रीमद् भागवतम का, किताबों का, फिर अपना चिट्ठी वगैरह लिखते थे, आंसर करते थे, फिर 10 बजे ठीक ऑफिस चल जाते, साथ में परिवार को भी देखते थे, इतना बड़ा परिवार था उनका, शायद 10 या 11 उनके बच्चे थे। तो सोचिए, ऑफिस का काम करना, परिवार का पालन करना, खुद की साधना करना, जप करना, और फिर इतने सारे किताब लिखना, तो सोचिए कोई साधारण व्यक्ति कर सकता है ऐसा नहीं। तो विशेष चैतन्य महाप्रभु के शक्ति प्राप्त था इनको, गौर शक्ति स्वरूप आए, तभी ऐसे महान अद्भुत कार्य वो कर पाए। आप देखिए, श्रील प्रभुपाद जी भी इसलिए उन्हीं के टाइम टेबल को थोड़ा बहुत उन्होंने भी फॉलो किया। प्रभुपाद जी भी ऐसे ही 8-10 बजे सो जाते थे और 1 बजे उठते थे, और फिर श्रीमद् भागवत और ये सब ग्रंथों का अनुवाद करते थे। तो इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी बहुत महान आचार्य हैं। श्री प्रभुपाद जी उनको बहुत सम्मान देते थे और श्री प्रभुपाद जी ने सिस्टम शुरू किया कि इस्कॉन में हम भक्तिविनोद ठाकुर जी का आविर्भाव और तिरुभाव तिथि बनाएं। कई लेक्चर भी हैं, प्रभुपाद जी ने स्वयं लेक्चर दिया है भक्तिविनोद ठाकुर के आविर्भाव के दिवस पे। तो बहुत ही प्रेरणादायक है भक्तिविनोद ठाकुर जी का जीवन। बहुत उन्होंने किताब लिखे हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी हैं उन्होंने। और जब पुरी में थे वो मैजिस्ट्रेट, तो उस समय का 5-6 साल ही थे केवल पुरी में वो, लेकिन वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय था। बहुत उन्होंने महान कार्य किया उस समय। क्या क्या महान कार्य किया? पहले तो जगन्नाथपुरी मंदिर में उसमें बहुत अनियमितता थी, प्रसाद ठीक से नहीं लगता था, भोग भगवान को ठीक से नहीं लगता था, सब पंडा लोग बहुत कुकर्म करते थे। जो राजा था पुरी का उस समय, वो भी गलत कार्यों में लगा रहता था, पुरी मंदिर से पैसा लूट के ले जाता था। तो सारे के सारे बिल्कुल व्यवस्था बहुत खराब थी। तो ब्रिटिशर्स, अंग्रेज सरकार ने उनको, क्योंकि वो मैजिस्ट्रेट भी थे और भक्त भी थे, उनको बोले आप पुरी मंदिर के इंचार्ज बनो। उस समय से लेके आज तक पुरी का जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो पुरी मंदिर का हेड है। आज भी जो पुरी का जो डीएम होता है वो पुरी मंदिर का हेड है। तो ये प्रथा वहीं से शुरू हुई, अंग्रेजों ने भक्तिविनोद ठाकुर को जिम्मेदारी दी, केदारनाथ दत्ता उनका नाम था, उनको जिम्मेदारी दी पुरी मंदिर का। और केदारनाथ दत्ता, भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बहुत सख्तीपूर्व स्ट्रिक्ट बन के सारे जो व्यवस्था है जगन्नाथपुरी मंदिर का, उन्होंने उसको सुव्यवस्थित किया। ठीक टाइम से भोग लगना, सारे पूजा वगैरह सब ठीक से होना। कुछ राजा था वो कुछ पैसा चुरा लिया था मंदिर से, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने फोर्स किया राजा को कि वो डेली जो भोग बनता है उसके लिए वो पैसा दे। तो ऐसा बताते हैं कि वो राजा बहुत क्रोधित हो गया और उसने एक स्पेशल एक यज्ञ किया 30 दिन का, ब्राह्मणों को बुला के, कि यज्ञ में ऐसे आहुति डाले कि भक्तिविनोद ठाकुर जी का मृत्यु हो जाए। 30 दिन का यज्ञ था, हवन था। और 30वें दिन जब वो आखिरी आहुति डाले, उन्होंने क्या सोचा, इस आहुति से कौन मर जाएगा? भक्तिविनोद ठाकुर। लेकिन हुआ क्या, वो राजा का बेटा मर गया। ये इतिहास है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, पूरी राजा का एकमात्र लौता बेटा मर गया। तो ये देखिए, ये होता है, कोई वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु होता है, उसका बुरा करना चाहता है, तो अंत में उसी का विनाश होता है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया, वो तो कृष्ण पे निर्भर थे। लेकिन हुआ क्या, 30वें दिन जब वो आहुति डाले तो राजा के बेटा मर गया। तीसरे से देखिए कितना संघर्ष भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उठाया और कितने वो अभय थे, निर्भय थे। और एक आपने सुना ही होगा प्रसिद्ध घटना, सब जानते हैं, एक योगी था, उसका नाम था बिशकसेन, जो कि परम पाखंडी था, बहुत था उसके पास योगी शक्ति। हाँ, वो आग के सामने जलता नहीं था, मुंह आग के सामने रखने से, और कई सारे ऐसे होते ना, भस्म वगैरह देना और सब भविष्यवाणी कर देना, तो थे उसमें कुछ योगी शक्ति थे। लेकिन उसका उसने गलत फायदा उठाया, लोगों को बोला मैं ही भगवान हूँ, मैं ही महाविष्णु हूँ, और गलत कार्यों में लगा रहता था। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी तो सेम अंग्रेजों के पास कंप्लेन आई, और अंग्रेज तब तक जान चुके थे कि जो केदारनाथ दत्त है ये बहुत ही शक्तिशाली ऑफिसर है। तो तुरंत अंग्रेजों ने बोला कि आप इस केस को डील कीजिए। तो स्वयं वो गए भक्तिविनोद ठाकुर उनके पास, पहले तो समझाया, माने नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला अरे आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने क्यों नहीं जाते? बोले जगन्नाथ ये तो लकड़ी है, मैं हूं साक्षात जगन्नाथ, मैं हूं कृष्ण। तो भक्तिविनोद ठाकुर बहुत क्रोध आया, उनको अरेस्ट कर लिया और फिर ट्रायल चला। कहते हैं 18 दिन तक ट्रायल चला और उसके बीच में वो विश्वक्षेन ने कई बार धमकी दी, बोले भक्तिविनोद तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तुम्हारे सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो कहते हैं उनके जो उनके बच्चे थे सबको बहुत तेज बुखार हो गया, भक्तिविनोद ठाकुर जी को भी हार्ट अटैक जैसा आने लगा, कई सारी मुसीबतें हुई इस 18 दिन के अंदर, कई जगह में आग लग गई क्योंकि वो शक्तिशाली योगी था। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर थोड़ा भी डरे नहीं, बोले नहीं ये बिल्कुल दुष्ट व्यक्ति है, पाखंडी, इसको दंड मिलना ही चाहिए। तो 18वें दिन भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उनको जेल की सजा सुना दी। और उस समय क्या हुआ, एक कोई दूसरा ब्रिटिशर था, उसने सुन रखा था कि जो योगी होते हैं उनका कहीं ना कहीं बल छिपा हुआ रहता है, तो विश्वक्षेन के बड़े बड़े बाल थे, तो उसने कैंची से उसका बाल काट दिया, और जैसे भी उसका बाल काट दिया तुरंत वो योगी जमीन में गिर गया। अच्छा, कहते हैं उस समय भी जब इसको वो सुना रहे थे ना उसकी सजा, तो उस समय भी हजारों लोग कोर्ट के बाहर थे और वो कर रहे थे, मतलब उनके रक्षा के लिए, मतलब वो जैसे अभी कुछ दिन पहले आप जानते हैं इंडिया में भी ऐसा हुआ था ये कोई पाखंडी बाबा था तो हजारों लोग, तो ये कोई नई बात नहीं, उस समय भी ऐसा ही था, हजारों लोग उनके समर्थक सब कोर्ट में घेराव कर दिए थे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने वो डरे नहीं और इस पाखंडी को सजा सुनाई। और फिर खैर उसका जब बाल कट गया, उसका सब शक्ति चला गया और जेल में ही वो मर गया जो अपने आप को विष्णु बोलता था। और केवल ये नहीं, कैसे से कई पाखंडी थे, कई ब्रह्मा पैदा हो गए, कई अपने आप को बलराम बोलने लगे, ऐसे कई सारे पाखंडी है, लेकिन सबको भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सीधा कर दिया, सबको जेल में डाल दिया। तो इसलिए बड़े शक्तिशाली थे भक्ति विनोद ठाकुर, पूरी मंदिर का सब व्यवस्था ठीक किए, ऐसे जो पाखंडी लोग थे उनको उन्होंने जेल में डाला। लेकिन साथ ही साथ भक्ति विनोद ठाकुर पुरी में अलग अलग स्थान में जाते थे, महाप्रभु की लीला स्थली, क्योंकि उन्हें चैतन्य चरितामृत में क्या पढ़ा, महाप्रभु कितने वर्ष पुरी में थे, 18 वर्ष लगातार पुरी में थे। तो अपने ये इस ऑफिस कार्य करते करते साथ ही साथ, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जाते थे हरदास ठाकुर के समाधि में, हरदास ठाकुर के भजन स्थल में, गंभीरा में, तो महाप्रभु की जो अलग अलग लीला स्थली है वहां पे जाते थे, प्रार्थना करते थे, गंभीर रूप से जप करते थे। उन्होंने हरदास ठाकुर के बारे में भी भजन लिखा, क्योंकि अंदर से तो उनकी यही इच्छा थी कि कैसे महाप्रभु के इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। तो उस समय उन्होंने काफी अध्ययन भी किया पुरी में सब ग्रंथों का, अलग अलग स्थान गए महाप्रभु की लीला स्थली। एक विशेष घटना हुई पुरी में, क्या सन 1874 में क्या हुआ, जब वो पुरी में थे, किनका जन्म हुआ, श्रील भक्ति सरण ठाकुर की जय, उनका जन्म हुआ पुरी में। उनका बचपन का नाम क्या था, बिमला प्रसाद। तो ये सब विशेष घटना तो आप सुने ही है कि जब बिमला प्रसाद कुछ महीनों के थे तो उस समय रथ यात्रा का उत्सव हुआ, और उनका जन्म स्थान कहाँ पे है, उसी मेन जो बड़दांड है, आप लोग जो पुरी में गए हैं आप जानते हैं, जो गौड़िया मठ है श्रील भक्ति सरण ठाकुर का जन्म स्थान, वो उसी रास्ते में आता है जहाँ पे जगन्नाथ जी का रथ, जगन्नाथ जी के मंदिर से कहाँ पे जाते हैं, गुंडीचा मंदिर। तो जब रथ वहां से गुजर रहा था उनके घर के सामने से, तो जगन्नाथ जी वहां पे रुक गए। देखिए जगन्नाथ जी का रथ उनकी इच्छा से चलता है, जैसे महाप्रभु के लीला में भी आपने सुना कि कई बार जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता था और हाथी घोड़े कितना लगाने से भी वो रथ टस से मस नहीं होता, लेकिन जब महाप्रभु आते थे और हल्का सा अपने सर से रथ को धक्का देते थे तो रथ चलने लगता था। तो जगन्नाथ जी अपने इच्छा से स्वयं चलते हैं, तो जगन्नाथ जी वहां रुक गए और जितना परिश्रम करने से भी रथ वहां से हिला ही नहीं। तो उस समय जो भक्ति विनोद ठाकुर थे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, बड़े सम्मानजनक पूरे हेड थे पूरे पूरे मंदिर के सब सबके, तो उनकी पत्नी थी तो उनको तो बहुत सम्मान के साथ लाया गया वहां पर, वो भी दर्शन करने आई और उनके गोद में छोटे से कुछ महीनों के बिमला प्रसाद थे। तो जैसे भी वो दर्शन करने जगन्नाथ जी के सामने बच्चे को लेके आई, जगन्नाथ जी का माला बच्चे पे गिर गया, तो सबको बहुत खुश हुए कि जगन्नाथ जी का विशेष आशीर्वाद मिला और उनका उसी समय अन्नप्राशन जो होता है बच्चों का उनको खिला के किया गया। तो ये सब जान गए कि ये जो बच्चा है ये महान वैष्णव है। और फिर कुछ साल के बाद फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी वापस बंगाल चले गए, लेकिन उनके मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी, क्या कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ पे है। उनके मन में तीव्र इच्छा प्रकट हुई कि मुझे चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को ढूंढना है, क्योंकि वो जान चुके थे कि उस समय जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जिसको कहते थे वो असली जन्म स्थान नहीं है, क्योंकि वो जो चैतन्य चेतामृत वगैरह पढ़ाई किए जो गंगा जी के पूर्व तट पे दक्षिण तट पे सॉरी पूर्व और पश्चिम में, तो उनको लग गया कि उस समय जो तथाकथित जन्म स्थान बताते थे, जो कि आज के दिन में जिसको नवदीप कहते हैं, जहां पे वो मंदिर है ना अपने महाप्रभु का, हाँ धामेश्वर महादेव, तो उसी को लोग जन्मस्थान मानते थे, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जान चुके थे कि वो जन्मस्थान नहीं है। कैसे ढूंढे, तो वो तो उनकी इच्छा थी कि कैसे वो वहीं मायापुर के आसपास रहे, तो वो तो अपनी नौकरी छोड़ना चाहते थे, इस्तीफा दे दिया, लेकिन अंग्रेजों ने बोला नहीं नहीं आप बहुत अच्छे ऑफिसर हो आप छोड़िए मत, हम आपको कृष्णनगर में ही पोस्टिंग देते हैं। और उनके लिए विशेष रेल लाइन बनाई गई थी, आज भी वो रेल लाइन है, ताकि वो घर से सीधे कोर्ट आ जाए। सोचिए इतने पावरफुल ऑफिसर थे, उनके लिए अंग्रेजों ने स्पेशल रेल लाइन बनाया और वो वहां पे गोद्रूम दाम में रुकते थे, आप भी जानते हैं आज वो उनका भजन कुटीर है वहां पे, तो वहां पे रुक के वो काफी अनुसंधान काफी रिसर्च किया उन्होंने
अलग अलग पुराने मैप को देखे, पुराने ग्रंथों को देखे, तो अंत में उन्हें पता चल गया कि गंगा जी के उस पार यही कहीं चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो एक बार वो अपने घर के ऊपर थे गोद्रुम द्वीप में, तो अचानक से उनको वहां बहुत तेज दिखाई दिया और उनको लगा कि शायद यही वो स्थान है। लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए उन्होंने किनको बुलाया? जगन्नाथ दास बाबा जी को। उनके गुरु जो थे जगन्नाथ दास बाबा जी, हाँ, उनका वैसे दीक्षा उन्होंने लिया था एक विपिन बिहारी गोस्वामी से, लेकिन वो विशेष शिक्षा प्राप्त किया उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी से, इससे ये सिद्ध होता है। तो देखिए, हम लोग ज्यादा विपिन बिहारी गोस्वामी के जी नहीं कहते, तो इससे सिद्ध होता है कि शिक्षा का ज्यादा महत्व है, दीक्षा का भी महत्व है, लेकिन यहां पे आप देखिए उन्होंने शिक्षा प्राप्त की किन से? जगन्नाथ दास बाबा जी से, उनको अपना गुरु मानते थे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी को बुलाया उन्होंने, उस समय उनकी वर्ष 100 से भी ज्यादा वर्ष थी उनका आयु, हाँ 128 माता जी कह रहे 128 उन साल की उनकी आयु थी। उस समय जगन्नाथ दास बाबा जी आंखें भी नहीं खुलती थी, उनके असिस्टेंट होते जो उनके आंख खुलते थे, उनको एक क्या कहेंगे एक एक टोकरी में उनको बैठा के लाया गया। लेकिन जैसे भी वो जनस्थान पहुंचे, 128 साल के जगन्नाथ दास बाबा जी टोकरी से उछल के नाचने लग गए, जय सचिनंदन गौर हरी, जय सचिनंदन गौर हरी। तो फिर ये सिद्ध हो गया कि ये स्थान चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। फिर भक्तिनो ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर भक्तिनो ठाकुर जी का ये मेन मिशन बन गया, उनका ध्येय बन गया किस तरह से वहां पे एक सुंदर मंदिर का निर्माण हो, कैसे पूरी दुनिया के लोग वहां पे आए चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान में। फिर भक्तिनो ठाकुर जी ने स्वयं कलकत्ता में घर घर गए और लोगों से 1 रुपये की भिक्षा किया। उस समय का 1 रुपया आज के जन्म मान लीजिए 1100 होगा, लेकिन भक्तिनो ठाकुर मैं ज्यादा नहीं लूंगा, केवल 1 रुपया। और सोचिए जो इतने फेमस थे, जो इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वो रिटायर होने के बाद अगर घर में लोग के पास जाते थे, 1 रुपया कौन मना करेगा, तो सबने 1-1 रुपया उनको दान दिया। और फिर उन्होंने बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण किया वहां पे भक्तिनो ठाकुर। आज भी जो हम देखते ना योगपीठ जो है, जो भक्तिनो जो महाप्रभु का जन्म स्थान है, वहां मंदिर निर्माण भक्तिनो ठाकुर जी ने ही किया। सोचिए कितना बड़ा इनका ये योगदान है, नहीं तो हम जानते नहीं महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ पे है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ढूंढा महाप्रभु का जन्म स्थान। और वैसे तो बहुत बातें हैं उनके बारे में कहने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में, लेकिन उनका सबसे बड़ा योगदान तो जैसे मैंने कहा, 2-3 बड़े बड़े उनके योगदान है। सबसे पहले तो उन्होंने जो शिक्षित समाज था, जो विद्वान लोग थे, उनके बीच में उन्होंने वापस से जो चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा है उसका जो आदर है उसको उन्होंने स्थापित किया। तो बड़े बड़े विद्वान समझे, अच्छा ये तो बहुत गंभीर है रहस्य, नहीं तो क्या सोचते थे, अरे ये तो ऐसे ही है, ये कृष्ण सब रासलीला करता था, ये क्या भगवान है, ये क्या वैष्णव है। तो लोग समझ नहीं पाते थे कितना गहराई है कृष्ण की लीला में या महाप्रभु के शिक्षाओं में। तो भक्तिनो ठाकुर जी ने उसको स्थापित किया। उस समय के जो महान लेखक थे, जो अपने बंकिम चंद्र चैटर्जी वगैरह जो थे, वो सब भक्तिनो ठाकुर जी के पास आते थे, उनसे महाप्रभु के बारे में कृष्ण के बारे में सुनते थे। तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि वो काफी सम्मानित थे समाज में। तो जितने सम्मानित विद्वान वगैरह थे उनके बीच में उन्होंने श्रीमद भागवत चैतन्य चरितामृत का स्थान उन्होंने ऊंचा किया। ये पहला उनका बड़ा योगदान है। दूसरा बड़ा योगदान क्या है? उन्होंने जो इतने सारे ग्रंथ लिखे, इतने सारे भजन, इतने सारे ग्रंथ, उनके कई किताब उन्होंने लिखा, जैव धर्म वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, कृष्ण संहिता, हाँ ऐसे कई सारे उनके महान ग्रंथ हैं। कृष्ण संहिता, चैतन्य शिक्षामृत, जैव धर्म और भजन रहस्य, स्वलिखित जीवनी और भागवत मरीचि का माला, ऐसे कई कई सारे उनके बहुत सारे किताब उन्होंने लिखा। लिस्ट देखेंगे तो 100 से अधिक उनकी किताब और पोएट्री वगैरह सब है। जैसे उन्हें बताया कृष्ण संहिता बहुत महत्वपूर्ण है, और जैव धर्म है बहुत महत्वपूर्ण, तो इस तरह कई उन्होंने महत्वपूर्ण किताब लिखे, और 1896 से बताया उन्होंने क्या लिखा, अंग्रेजी में किताब लिखा, लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और शिक्षाष्टकम पे उन्होंने बहुत सुंदर उन्होंने टीका लिखा है, अमनय सूत्र, वैष्णव सिद्धांत माला, प्रेम प्रदीप, चैतन्य उपनिषद पे उन्होंने टीका लिखा। अच्छा, एक और विशेष उन्होंने किया कि वेदों से उन्होंने प्रमाण निकाले कि कैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, यह भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने चैतन्य उपनिषद बोलकर ढूंढ के निकाला वेदों में, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में शास्त्र में प्रमाण दिया गया है। और जैव धर्म ही बहुत विशेष है, श्रील प्रभुपाद जी अपने टीका में कई बार जैव धर्म के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हैं। और खैर, भजन तो उन्होंने बहुत सारे भजन गाए, यशुमती नंदन व्रजवर नागर, जय राधा माधव, विभावरी शेष आलोक प्रवेश, और ओहे वैष्णव ठाकुर। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ये 5 मिनट भजन को भी गाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने बहुत बहुत सारे सुंदर सुंदर भजन लिखे, शरणागति, सोचिए इतने सुंदर जो उनके शरणागति कविता है, बहुत ही गंभीर है, कैसे महाप्रभु के शरणागति का जो भाव है उसको उन्होंने प्रकट किया। की जानी की बोले तुम्हार स्थाने होइनु शरणागत, तो बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखा है, आप वो तो सुने ही होंगे। मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तू आप दे नंद किशोर, ये भजन भी उन्होंने लिखा। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर कविता उन्होंने लिखा, उनकी किताब है शरणागति, तो बहुत एक से गंभीर कविता है। प्रभुपाद जी स्वयं भी बहुत गाते थे भक्तिनाथ ठाकुर जी की कविता, और जो हमारे पुस्तक है जो वैष्णव आचार्यों के गीत, इसमें दो ही तो आचार्य के मेन गीत है, किनके किनके, भक्तिनाथ ठाकुर और नरोत्तमदास ठाकुर, ये दो महान आचार्य हमारे संप्रदाय में है जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर वैष्णव भजन लिखे हमारे लिए। तो जैसे मैंने बताया, पहला उनका था कि सब शिक्षित समाज के बीच में महाप्रभु की शिक्षाओं को स्थापित करना, और जो अपसिद्धांत वाले थे उनको गलत स्थापित करना, जो आउल बाउल सहजिया थे, हाँ, उनको उन्होंने समाज को बताया कि ये सब झूठे हैं, ये सब वैष्णव नहीं है। फिर उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखे, पोइम लिखा उन्होंने, कविता, फिर चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान को उन्होंने ढूंढा। इतना ही नहीं, उन्होंने नामहट की भी स्थापना की। आज इस्कॉन में नामहट सेंटर है, वो भक्तिनाथ ठाकुर जी ने शुरू किया। उन्होंने एक सोसाइटी बनाया, विश्व वैष्णव राजसभा, जो कि पहला, सोचे उस समय उन्होंने सोचा था विश्व, कि विश्व में विश्व भर के लोग इस सभा में आएंगे। तो बाद में जो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बनाया, तो कह सकते उसकी जो बीज थी वो किसमें थी, विश्व वैष्णव राजसभा, जो कि भक्तिनाथ ठाकुर जी ने बनाया। सबसे पहली बार उन्होंने महाप्रभु के सिद्धांत पर उन्होंने पत्रिका शुरू की, गौड़ीय वैष्णव पत्रिका, क्या नाम था शायद, तो उन्होंने इस तरह से, यह भी उनका बहुत बड़ा एक हमारे लिए योगदान है। तो और आखिरी में, खैर आज तो वैसे आविर्भाव दिवस है, वैसे आप आखिरी कई साल भक्तिनाथ ठाकुर जी निर्जन भजन में गए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है भक्तिनाथ ठाकुर जी का जीवन का, ध्यान से सुनिए आप सब। उन्होंने पूरे जीवन, उन्होंने इतना प्रचार किया, इतने बड़े ऑफिसर रहे, इतना कुछ समाज के लिए किया, लेकिन आखिरी के कुछ वर्ष वो सब कुछ सबसे मिलना जुलना बंद करके एक कोठरी के अंदर, एक कमरे के अंदर वो बंद हो गए, जिसमें 4 दीवारें थी, जिसमें खिड़की भी नहीं था, और दिन रात उसमें वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। तो उन्होंने ये भी शिक्षा दिया कैसे वो आखिरी समय बहुत गंभीर भजन में लग गए, कोई उनसे मिल नहीं सकता था उस समय। पूरी में आज भी वो स्थान है भक्ति कुटी, जहां पे बिल्कुल हरदास ठाकुर के समाधि के सामने, जहां पे भक्तिनाथ ठाकुर जी ने आखिरी कई वर्ष तक बहुत गंभीर भजन किया। और हरदास ठाकुर के विशेष रूप से बहुत उनके क्या कह सकते हैं, उनके एक तरह से आइडियल थे भक्तिनाथ ठाकुर जी के, जो हरिनाम चिंतामणि किताब है वो भी भक्तिनाथ ठाकुर जी ने लिखा। वो क्या है, हरदास ठाकुर और महाप्रभु के बीच में वार्तालाप। तो हरिनाम के भी विशेष आचार्य हैं, जैसे हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं, लेकिन उनके बाद हम कह सकते दूसरे नामाचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी। उन्होंने भी नाम जप पे बहुत बहुत जोर दिया, हरिनाम चिंतामणि किताब में उन्होंने बहुत विशेष जोर दिया हरिनाम जप के बारे में, और खुद भी उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया। कई आखिरी के कई वर्ष वो केवल हरिनाम के जप में 24 घंटे रहे। तो ये भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए ठाकुर भक्ति विनोद से कि हरिनाम पे उनकी बहुत आस्था थी और हरिनाम के बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। आप देखिए ना, जो मंगलारती गाते उसका आखिरी लाइन क्या है, नाम सुधारस गाओ कृष्ण जस लाखो वचन मन मोर। ऐसे ही और एक भजन लिखते हैं, उदिल अरुण पूरब भागे, उसमें लास्ट में ही लिखते हैं कि नाम श्रय करी जतने तुम्ही ताको अपना काजे। भक्तिवीन ठाकुर कहते हैं आप अलग अलग कार्य हैं आपके, आप सब कार्य करिए लेकिन नाम का आश्रय जरूर लीजिए। तो इस तरह से कई सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं भक्तिवीन ठाकुर जी ने। तो एक भजन हम गा के अंत करते हैं क्योंकि आज उन्हीं का आविर्भाव दिवस है, तो आज उन्हीं का भजन गाते हैं और उन्हीं से हम प्रार्थना करते हैं। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर। 1914 में उनका तिरुभाव हुआ था। कई भजन लिखे, जीव जागो गोरा चांद बोले, उनके एक एक भजन में ही एक एक क्लास हो सकता है। पूरी चैतन्य महाप्रभु की पूरी शिक्षा को उन्होंने जीव जागो में ही बता दिया कि कैसे महाप्रभु ये औषधि माया लेके आए हम सबके लिए, हम सबको बचाने के लिए। गाए गोरा मधुर स्वरे, प्रभुपाद जी सब भजन बहुत लाइक करते थे। गाए गोरा मधुर स्वरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते गृह थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूलो नाको वदने हरि नाम करो। माया जाले बद्ध होए आछे मीछ काज लय, एखनो चेतना पाए राधा माधव नाम बोलो रे। जीवन होइलो शेष ना भजलो ऋषिकेश, भक्ति विनोद उपदेश एक बार नाम रसे मातो रे। एक बार नाम रस में आप डूब के देखिए। फिर गोपीनाथ, बहुत सुंदर भजन है, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। इस तरह से बहुत सुंदर उनके सब भजन लिखे हैं उन्होंने। तो बस ये भजन गाते हैं हम लोग। अच्छा, जो महाप्रसाद है गोविंद है वो भी भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करो। ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर, ए दासे करुणा करो। करी दिया पद छाया शोधोए आमारे, दिया पद छाया तुमार चरण धरी। छय बेगदमी छय दोष शोधि, छय गुण देहो दासे। छय सत संग देहोए आमारे, छय सत संग बसे छी संगेर आशे। एकाकी आमार नाही पाय बल, हरि नाम संकीर्तन তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, তুমি কৃপা করি শ্রদ্ধা বিন্দু দিয়া, देह कृष्ण नाम धने कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पार तुमार शक्ति आछे कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पार कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पार तुमार शक्ति आछे आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बली धाई तब पाछे पाछे आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली आमी तो कांगाल धाई तब पाछे पाछे ओ हे वैष्णव ठाकुर दया र सागर हे दासे करुणा करी ओ हे वैष्णव ठाकुर दया र सागर दिय पद छाया शोधोए आमारे दिया पद छाया शोधोए आमारे तुमार चरण धरी ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर हे दासे करुणा करी ओहे इसका थोड़ा अनुवाद पढ़ लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भजन है तो आज प्रार्थना करते हैं भक्तिनोद ठाकुर जी से हे वैष्णव ठाकुर आप तो दया के सागर हैं इस दास पर करुणा करके अपनी श्री चरणों में शरण देकर मेरे अनर्थग्रस्त हृदय को निर्मल कीजिए मैं आपके श्री चरणों को पकड़कर प्रार्थना करता हूं आप कृपा पूर्वक मेरे षड वेगों का दमन कीजिए तथा मेरे छह दोषों को सुधार कर छह गुणों को प्रदान कीजिए हे वैष्णव ठाकुर मुझे छह प्रकार का सत्संग प्रदान कीजिए मैं सत्संग की आशा लगाए बैठा हूं अच्छा छह वेग क्या है वाणी मन क्रोध जिह्वा उदर और जननेन्द्रिय का वेग जैसे कहता है छह जो उपदेशामृत में लिखा है वाचो वेगम उदरपस्थ वेगम तो वही छह वेग छह दोष क्या है जो अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह अधिक आहार करना भक्ति प्रतिकूल चेष्टा प्रजल्प भक्ति के नियमों में दुर्ग्रह अथवा आग्रह अनाग्रह कुसंग भक्ति के अतिरिक्त दूसरे असत मत वादों का ग्रहण करके करने की इच्छा ये छह दोष है छह गुण क्या है उत्साह निश्चया धैर्यात भक्ति साधन में उत्साह निश्चयता धैर्य भक्ति पोषक कार्य का अनुष्ठान कुसंग त्याग और सदाचार छह सत्संग क्या है ददाति प्रतिगृणाति प्रतिपूर्वक प्रीतिपूर्वक भक्तों को आवश्यक वस्तु देना उनके द्वारा दी गई वस्तुओं को ग्रहण करना उनके समीप हृदय की बातें व्यक्त करना भक्ति रहस्य को सुनना प्रसाद सेवन करना और प्रसाद सेवन कराना तो देखिए ये जो छह वेग हैं, इनको हम कैसे दमन कर सकते हैं अपने बल से नहीं लेकिन कृष्ण के और वैष्णवों के कृपा से इसलिए प्रार्थना करते हैं वैष्णव ठाकुर आप कृपा कीजिए आपकी कृपा से हम छह वेग को दमन कर पाएंगे आपकी कृपा से इन छह दोष से हम मुक्त हो पाएंगे आपकी कृपा से हमें छह गुण मिल सकेंगे आपकी कृपा से हम छह तरह के सत्संग कर पाएंगे फिर कहते एकाकी हरि नाम संकीर्तन करना भी मेरे बस की बात नहीं है, अतः आप मुझे कृपा कर कृष्ण नाम रूपी धन के प्रति श्रद्धा की एक बूंद मात्र प्रदान कीजिए। देखिए ये प्रार्थना में करनी चाहिए, जो कृष्ण नाम का धन है यह हमें ऐसे नहीं प्राप्त होगा, ये केवल वैष्णव आचार्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती, उनके पास कृष्ण कृपा कृष्ण नाम की धन है, जिनके पास धन है उनसे ही तो हम धन मांगेंगे, जो गरीब है वो हमें क्या देगा। तो इसलिए जो कृष्ण भक्ति का जो धन है, हरिनाम संकीर्तन का जो धन है, नाम रुचि हमें किससे प्राप्त होगी, वैसे ही वैष्णव से, जिनकी नाम रुचि जिनके पास है, जिनके पास कृष्ण नाम का धन है वो कृपा करके हमें प्रदान कर सकते हैं। कि कृष्ण जो तुमार, जो कृष्ण है वो भगवान की संपत्ति है, ये भक्तों की संपत्ति है। कृष्ण से तुमार, भगवान कहते हैं मैं अहम भक्त पराधीन हूं, तो भक्त जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है, ये कृष्ण किनकी प्रॉपर्टी है, भक्तों की, शुद्ध भक्त की प्रॉपर्टी है कृष्ण, इसे शुद्ध भक्त कृष्ण प्रदान कर सकते हैं। कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्ति आचे, ये शक्ति है शुद्ध भक्त की, वो हमें कृष्ण दे सकते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या किया, जहां जहां जाते थे वो कृष्ण सबको प्रदान करते थे, क्योंकि उनके पास वो शक्ति थी। भक्तिनाथ ठाकुर ऐसे वैष्णव है जो कृष्ण प्रदान कर सकते हैं, इसीलिए क्या भाव होना चाहिए हमारा, आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे, तो अत्यंत विनम्र भाव से, जैसे कोई भिखारी कई बार हमारे पीछे भागता है ना कि पैसा दे दो पैसा दे दो, तो कई बार ऐसे होता है कि अगर हम नहीं देना चाहते नहीं फिर भी दे ही देते हैं कि चलो इतना मांग रहे हैं कुछ दे देते हैं, तो उसी भावना से आज हम भक्तिनाथ ठाकुर जी हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आमी तो कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तव पाछे, हे भक्तिनाथ ठाकुर मैं अधम हूँ, मेरे पास कृष्ण धन नहीं है, कृष्ण प्रति कोई आकर्षण नहीं है, नाम के प्रति कोई रुचि नहीं है, ये सारे वेग मुझे सता रहे हैं, सारे दोष मेरे में हैं, लेकिन आप कृपा करके मुझे कृष्ण नाम का धन दीजिए। और भक्ति में आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव महामहोत्सव की। श्री प्रभुपाद की। सामेत गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।